प्रिय विद्यार्थियों, आज हम विधायिका के बारे में बात करेंगे। विधायिका यानी संसद केंद्र में होती है और राज्यों में विधानसभा होती है और कुछ राज्यों में विधान परिषद भी होती है, जो 6 राज्य बताए गए हैं। तो जैसे विधायिका जहां कानून निर्माण प्रक्रिया शुरू होती है, उसके बारे में कहा जाता है कि संघ की विधायिका को संसद कहा जाता है, यानी केंद्र सरकार की जो विधायिका होती है उसे संसद कहते हैं। यह राष्ट्रपति और 2 सदन, जो एक राज्यसभा राज्यों का सदन होता है और एक जनता का सदन हम लोकसभा कहते हैं, इन तीनों से मिलकर बनती है। राज्यों की विधायिका को विधानमंडल या विधानसभा भी कहते हैं। लोकतांत्रिक शासन में विधायिका का महत्व बहुत अधिक होता है। भारत में संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है, जो ब्रिटिश प्रणाली पर आधारित है। हम देखते हैं संसद के 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा जिसे हम निम्न सदन कहते हैं, एक राज्यसभा जिसे हम उच्च सदन कहते हैं। लोकसभा में प्रत्यक्ष निर्वाचन जनता द्वारा होता है, जबकि राज्यसभा का जो चुनाव होता है वह अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित प्रतिनिधि यानी विधानसभा के MLA राज्यसभा में राज्यसभा के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। इसी प्रकार हम देखते हैं सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका का काम होता है कानून बनाना, कार्यपालिका का काम होता है कानून जो बने हैं उनको लागू करना, और न्यायपालिका का काम ये देखना होता है कि जो कानून बने हैं वो सही हैं या नहीं, यानी संविधान के अनुसार हैं या नहीं। यदि संविधान के अनुसार हैं तो उन्हें लागू रखा जाता है, और अगर नहीं तो उन्हें अवैध घोषित। विधायिका का चुनाव जनता द्वारा होता है। हम देखते हैं जहाँ जो हमारे जनप्रतिनिधि होते हैं उनका चुनाव डायरेक्ट जनता द्वारा होता है, इसलिए ये जनता के प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है, और यहाँ जनता के प्रतिनिधि कानून बनाने का काम करते हैं। इसमें इसकी बहस, विरोध, प्रदर्शन है ना, सरोकार सभी हम देखते हैं, संसद की प्रक्रिया में देखते हैं कि संसद कैसे कैसे काम करती है। हम देखते हैं संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार भारतीय संसद को 2 सदनों के साथ साथ राष्ट्रपति को भी शामिल किया गया है। जो आर्टिकल 76 है उसमें कहा गया है कि संसद के 3 अंग होंगे, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। द्विसदनात्मक राष्ट्रीय विधायिका का पहला लाभ समाज के सभी वर्गों और देश के सभी क्षेत्रों को समुचित प्रतिनिधित्व दे सकना है। दूसरा लाभ संसद के प्रत्येक निर्णय पर दूसरे सदन पर पुनर्विचार। हम देखते हैं हमारे जो संसद है 2 सदन में क्यों है। पहला सदन में जितने भी हमारे समाज के वर्ग हैं उनके सभी का रिप्रेजेंटेशन होता है, प्रतिनिधित्व होता है, और दूसरा सदन उस विचार जो पहले सदन ने किया उस पर पुनर्विचार कर सकता है। इस प्रकार यह फायदा होता है। हम देखते हैं भारतीय संसद की ऊपरी सदन राज्यसभा है। इसकी अधिकतम संख्या 250 सदस्य होते हैं, जिनमें 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है और 238 सदस्य राज्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। इनका निर्वाचन 6 वर्ष के लिए किया जाता है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, उसको कभी भंग नहीं कर सकते। प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसके 1/3 सदस्यों का चुनाव होता है और 1/3 सदस्य रिटायर भी होते हैं। मनोनीत सदस्य, जो 12 मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है, वो साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा, खेल आदि के क्षेत्र से लिए जाते हैं। अमेरिका में द्वितीय सदन, जिसे हम सीनेट कहते हैं, में प्रत्येक राज्य को समान प्रतिनिधित्व दिया गया है। यानी अमेरिका में 50 राज्य हैं तो हर एक राज्य से 2 रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, यानी 100 लोग आते हैं, मगर भारत में ऐसा नहीं है। भारत में अधिक जनसंख्या वाले राज्य को अधिक और कम जनसंख्या वाले राज्य को कम प्रतिनिधित्व दिया जाता है। जैसे हम देखते हैं यूपी है, यूपी में ज़्यादा पॉपुलेशन है तो यूपी में राज्यसभा में ज़्यादा MP होंगे, और गोवा है तो कम है तो कम होंगे, है ना। तो राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता क्या है? सबसे पहला तो यही है कि वो भारत का नागरिक हो, उसकी आयु कम से कम 30 वर्ष पूरी कर चुका हो, इनका निर्वाचन एकल संक्रमण मत प्रणाली के अनुसार किया होता है। 1951 के जनप्रतिनिधि कानून के अनुसार राज्यसभा या लोकसभा के उम्मीदवार का नाम किसी न किसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पंजीकृत होना आवश्यक है। अब हम राज्यसभा की वित्तीय शक्तियों के बारे में बात कर लेते हैं। राज्यसभा की वित्तीय शक्तियाँ बहुत कम हैं। पहली बात तो यह कि राज्यसभा में कभी भी वित्तीय विधेयक, धन विधेयक प्रस्तुत नहीं होता, और जब लोकसभा से पास हो के आता है तो वित्तीय विधेयक पर राज्यसभा ज़्यादा से ज़्यादा 14 दिन तक विचार कर सकती है। 14 दिन में उसने स्वीकार कर दिया तो ठीक है, नहीं करा तो वो स्वीकार माना जाता है। संविधान में संशोधन संबंधी शक्तियाँ राज्यसभा को प्राप्त हैं। प्रशासनिक शक्तियों जैसे मंत्रियों से उनके विभाग के संबंध में प्रश्न पूछना राज्यसभा में ही पूछे जाते हैं। अन्य शक्तियाँ जैसे चुनाव करवाना, महाभियोग लगवाना राष्ट्रपति पर या न्यायाधीशों पर, आपात स्थिति की घोषणा करना, न्यायाधीशों को उनके पद से हटाना इत्यादि में दोनों सदनों की अनुमति आवश्यक है। अब हम लोकसभा की बात कर लेते हैं। भारतीय संसद का निम्न सदन कहते हैं लोकसभा। इसमें मैक्सिमम 550 सदस्य हो सकते हैं। वर्तमान में इसमें 543 निर्वाचित सदस्य हैं और 2 सदस्य एंग्लो इंडियन समुदाय के होते हैं, जो अभी 2020 में कानून बना के ख़त्म कर दिया गया है। राष्ट्रपति जो 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों को मनोनीत कर देते हैं वो ख़त्म कर दिया। हम देखते हैं लोकसभा के सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। इनका कार्यकाल होता है 5 वर्ष निर्धारित किया जाता है, परंतु उसे समय से पहले भी भंग किया जा सकता है। लोकसभा को तो भंग कर सकते हैं हम समय से पहले और मध्यावधि चुनाव करा सकते हैं, मगर राज्यसभा को कभी भंग नहीं कर सकते। भारत में संसदीय शासन प्रणाली होने के कारण लोकसभा अत्यधिक शक्तिशाली है, क्योंकि इसके सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होता है। इसके कार्यपालिका को हटाने की शक्ति भी प्राप्त है अविश्वास प्रस्ताव द्वारा। अब हम देखते हैं संसद का काम क्या है। संसद का मुख्य काम है कानून बनाना, कार्यपालिका या प्रधानमंत्री के उस पर नियंत्रण करना, कार्यपालिका पर नियंत्रण करना, वित्तीय बजट पारित करना, संविधान संशोधन करना, निर्वाचन संबंधी कार्य जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करना, न्यायिक कार्य करना, यानी जैसे मान लीजिए राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा या न्यायाधीशों पर महाभियोग लगा तो उसकी जाँच करना, प्रतिनिधित्व करना, सभी समुदायों का प्रतिनिधित्व करना, बहस का मंच है संसद हमारी, विदेश नीति पर नियंत्रण करती है, विचारशील कार्य करते हैं। हम देखते हैं कि लोकसभा की विशेष शक्तियां धन विधेयक प्रस्तुत करना है, उसे संशोधित करना, उसे अस्वीकार करना। मंत्रिपरिषद केवल लोकसभा पर ही उत्तरदायी होती है। ये तो इस प्रकार आज हमने लोकसभा और राज्यसभा के बारे में जाना।